अभिनंदन। आप सभी जानते हैं कि घड़ी की टिक टिक अपना सफर शाम के 8 बजाती है और जागरण आपके लिए लेकर के आ जाता है दिन भर की खास खबरें। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन से। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई, सिर्फ 2 दिन में 172 किए ढेर। वैक्सीन की कीमत को लेकर भारत बायोटेक बोला 150 रुपए में आपूर्ति करना लंबे समय तक संभव नहीं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा चुके लोगों के लिए कोरोना टीके का एडिशनल डोज कारगर। दिल्ली में आबकारी विभाग यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट का नया फरमान, होटल रेस्टोरेंट्स और बार्स में नहीं परोसी जाएगी शराब। इंडिगो विमान की लैंडिंग के दौरान फटा टायर, बाल बाल बचे यात्री व क्रू मेंबर्स। 43% उपभोक्ताओं ने 12 महीने में नहीं खरीदा एक भी चीनी उत्पाद। लॉकडाउन के लाइफस्टाइल से दिल्ली के 51% बच्चों का बीएमआई डिस्टर्ब, 18,000 बच्चों पर हुआ सर्वे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से जानने की। खबरों के बाद हम बात करेंगे आज एल्डर अब्यूज डे पर। अफगानिस्तानी सुरक्षा बल तालिबान आतंकवादियों पर अब काल बनकर टूट पड़े हैं। अफगानिस्तान में पिछले 48 घंटों के दौरान तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल की सिलसिलेवार कार्रवाई में 172 आतंकवादी मारे गए हैं। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि सरकार को 150 रुपए प्रति खुराक की कीमत से कोवैक्सीन की आपूर्ति करना लंबे समय तक संभव नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोविशील्ड की निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को टीके की खुराक को 150 रुपए में खरीद रही है। कंपनी ने कहा कि इसलिए निजी बाजारों में लागत के हिस्से को ऑफसेट करने के लिए एक उच्च कीमत की आवश्यकता होती है। भारत बायोटेक का यह बयान उस चर्चा के बीच में आया है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से टीके का दोबारा मोल भाव कर सकती है। एक स्टडी में यह जाना गया है कि कोविड-19 रोधी टीके की अतिरिक्त खुराक देने से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा चुके मरीजों का इस महामारी से अधिक बचाव होता है। टीका लगवा चुके लोगों का जीवन जहां सामान्य होता महसूस हो रहा है, वहीं ऐसे लाखों लोग हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली दवाएं लेते हैं। इनमें से कुछ लोग अंग प्रतिरोपण के कारण, कुछ कैंसर्स या अन्य विकारों के कारण ऐसी दवाएं लेने को मजबूर हैं, और उनके लिए अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है कि वे वास्तव में कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता को टीकों के जरिए मजबूत बनाना आसान नहीं है। यह सर्वे छोटे स्तर पर किया गया जिसमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा चुके 30 मरीज शामिल थे, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिहाज से टीके की अतिरिक्त खुराक के प्रभाव को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण शोध है। हाल ही में दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि अभी राजधानी के होटल्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स के बार्स में शराब नहीं परोसी जाएगी। कोविड-19 के मामलों में कमी होने के बाद राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था। दिल्ली के आबकारी विभाग यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक होटल्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स में बार बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया कि बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें 6 जून को दोबारा खुली थीं। दिल्ली में करीब 2 महीने से बंद रेस्टोरेंट्स को 50% की क्षमता के साथ उसमें 21 जून तक ट्रायल के तौर पर बैठकर खाने यानी कि डाइन इन सुविधा देने की इजाजत दे दी है। कन्नौर से कर्नाटक आ रहे इंडिगो की उड़ान में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। दरअसल कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट पर सोमवार शाम लैंडिंग के दौरान ही फ्लाइट का टायर फट गया। हालांकि इसमें सवार सभी यात्री व क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। मंगलवार को एयरलाइंस की ओर से जानकारी दी गई कि फिलहाल एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस जांच के लिए भेजा गया है। इंडिगो के 6E7979 उड़ान कन्नूर से हुबली जा रही थी। एयरलाइंस के एक अधिकारी के अनुसार सोमवार रात 8:03 पर लैंडिंग का प्रयास किया गया, लेकिन विपरीत दिशा की तेज हवा के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके करीब आधे घंटे बाद इसकी लैंडिंग हो सकी। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय व चीनी सैनिकों में हुए संघर्ष के 1 साल बाद भी दोनों देशों के व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में इसका असर देखा जा रहा है। भारत सरकार ने सीमा पर हुए संघर्ष के बाद चीन को आर्थिक मोर्चे पर पटकनी देने और स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिए देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि गत वर्ष कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां लंबे समय तक बंद रही थीं। बाद में सरकार ने टिकटॉक समेत 100 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था। गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारतीय काफी गुस्से में थे। नवंबर 2020 के त्योहारी सीजन में इंटरनेट मीडिया लोकल सर्कल्स की तरफ से कराए गए सर्वे में 71% भारतीयों ने कहा था कि उन्होंने चीन निर्मित कोई भी सामान नहीं खरीदा है। कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ने लगी है, ऐसे में भारतीय उपभोक्ताओं के मौजूदा रुख को समझने के लिए लोकल सर्कल्स ने एक बार फिर सर्वे किया। इसमें 43% लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले एक साल में चीन निर्मित कोई सामान नहीं खरीदा है। स्पोर्ट्स विलेज स्कूलों द्वारा 18,550 दिल्ली के बच्चों पर किए गए एक स्वास्थ्य सर्वे में सामने आया कि दिल्ली के 51% बच्चों का BMI गड़बड़ हुआ है। ये निष्कर्ष समूह के 11वें वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि AHS का हिस्सा है, जिसमें भारत के 250 शहरों और कस्बों के 364 स्कूलों से 7 साल से 17 साल के आयु वर्ग के 2,54,681 बच्चों को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण में सामने आया कि न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत में बच्चों की फिटनेस खराब हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण COVID-19 के कारण पैदा हुई न्यू नॉर्मल स्थिति है, जिसके कारण वो मजबूरन घर पर रहे। लॉकडाउन ने बच्चों की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल कर रख दी है। ऑनलाइन कक्षाओं में समय बिताते बच्चे खेलकूद और शारीरिक गतिविधि बहुत कम कर पाए हैं। इससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसी के साथ आइए बात करते हैं शिक्षा और विकास के क्षेत्र से। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में निकली 42 पदों की भर्ती, इन दिन से शुरू होंगे आवेदन। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस ने 7वें CPS के पे मैट्रिक्स लेवल 2, 4 और 7 पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बोर्ड द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार सीनियर असिस्टेंट के 8 पदों, जूनियर असिस्टेंट के 30 पदों और जूनियर अकाउंटेंट के 4 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर एंट्री क्लास 2 के पद पर 14 वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 24 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट mphc.government.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सामान्य वर्ग के लिए 7, OBC के लिए 2, SC के लिए 2 और ST के लिए 3 पद हैं। परीक्षा तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। इसी के साथ आइए बात करते हैं मनोरंजन की दुनिया से। वरुण धवन के घर आया नन्ना मेहमान, एक्टर ने वीडियो शेयर कर फैंस से लड़के के नाम का मांगा सुझाव। बॉलीवुड सुपरस्टार वरुण धवन अपने घर एक नए मेहमान का स्वागत करते हुए एक वीडियो में नजर आ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि वरुण ने अपने इस नए मेहमान को अपना लड़का बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपने फैंस से इस मेहमान के नाम के सुझाव भी मांगे हैं। वरुण धवन का ये पोस्ट वायरल हो चुका है। वरुण धवन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह अपने पप्पी के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वरुण धवन जमीन पर लेटे हुए हैं और वहीं उनका पप्पी उनके साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को साझा करते हुए वरुण धवन ने अपने नए मेहमान यानी पप्पी को अपना लड़का कहा, साथ ही साथ इसको लेकर फादरहुड लिखा है। किरण खेर के बर्थडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी चिट्ठी। इस चिट्ठी को देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जागरण पर जा सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस किरण खेर का 14 जून को जन्मदिन था। उनके वेल विशर्स और दोस्तों ने इस मौके पर उनको दिल खोलकर बधाइयां दी। इस बीच उन्होंने एक खास शुभकामना संदेश अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ये संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने किरण खेर के बर्थडे पर लेटर भेजा है। किरण ने जवाब में पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर शुक्रिया अदा किया। किरण खेर ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भेजी चिट्ठी फैंस के साथ भी शेयर की। इस चिट्ठी के साथ किरण खेर ने लिखा, मेरे जन्मदिन पर दिल को छू लेने वाली शुभकामनाएं भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आइए चलते हैं आज की स्पेशल बुलेटिन की तरफ। क्या हम बुजुर्गों का उतना सम्मान कर रहे हैं जितना करना चाहिए? 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद है हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामलों में कमी लाने की कोशिश करें। भारत की जनसंख्या में तेजी के साथ साथ बुढ़ापे की तरफ भी ये संख्या बढ़ रही है। पूरी आबादी का 20% हिस्सा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा। ऐसे में अगर भारत के युवा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू नहीं करते या फिर इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाता तो बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामले बढ़ते रहेंगे। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस एक्ट साल 2007 में एक कानून बना था, जिसमें माता पिता की देखभाल के साथ ही यह भी प्रावधान था कि इस कानून के तहत माता पिता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और कोर्ट चाहे तो बच्चों को माता पिता की देखभाल करने का आदेश भी दे सकती है। साथ ही हर महीने 10,000 रुपए गुजारा भत्ता भी देने को कह सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है या उन्हें अकेले अपना गुजारा करने के लिए छोड़ देता है, इसके लिए आरोपी व्यक्ति को 3 से 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि अब तक इस कानून के बारे में कम ही लोगों को जानकारी है, साथ ही दुर्व्यवहार की शिकायत भी बहुत कम ही लोग करते हैं और इसके पीछे की वजह होती है समाज में नाम खराब होने का डर। अपने परिवार वालों पर बुजुर्गों की पूरी तरह से निर्भरता, आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर होना और बुजुर्गों के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद न होना है। हेल्पेज इंडिया की स्टडी में सिर्फ 18% बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत करने की बात स्वीकार की थी। ऐसे में अगर आप अपने आसपास किसी भी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता देखते हैं तो आप मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस एक्ट 2007 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उन बुजुर्गों का साथ दे सकते हैं। इसी के साथ आज खबरनामा में इतना ही। देश और दुनिया की खास खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट और डाउनलोड कर लीजिए हमारा जागरण ऐप 24/7 अपडेट्स के लिए। कल फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की खास खबरों के साथ। धन्यवाद।